मेरे अजीज दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 29 दिसंबर 2016 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन चार नौजवान साथियों का भी, जिन्होंने एकेडमी की अगले साल फरवरी मार्च में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं मानसी जैन, आप हाथरस उत्तर प्रदेश से हैं, गौरव श्रीवास्तव, आप झांसी उत्तर प्रदेश से हैं, इंद्रजीत कुमार, आप गया बिहार से हैं, और रूपेश शुक्ला, आप अमेठी उत्तर प्रदेश से हैं। तो मानसी, गौरव, इंद्रजीत और रूपेश, आप चारों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, स्वागत के इस क्रम के बाद अब हम आते हैं न्यूज एनालिसिस पर और उसकी शुरुआत करेंगे एआईआर न्यूज से। मित्रों, जब मैं एआईआर की न्यूज सुन रहा था तो मेरी कोशिश थी कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को पकड़ पाऊं, लेकिन सच पूछे तो कल के न्यूज में भी उस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। हाँ, कुछ चीजों को लेकर हम कंटेंट के रूप में उनको अपने जेहन में रख सकते हैं और प्रश्न आने पर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मित्रों, ऐसे दो खबरें मैं आपको स्पेशली चर्चा करना चाहूंगा। पहले तो अनिल बैजल जी, जिन्हें दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया। आपको मालूम है कि नजीब जंग जी ने इस्तीफा दे दिया था, वो मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसर थे, और अब अनिल बैजल जी को उनके स्थान पर लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। और अनिल बैजल जी भी आईएएस के हैं, 1969 बैच के ऑफिसर रहे हैं। और मुझे वो समय याद आ रहा है जब अनिल बैजल साहब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी हुआ करते थे और मुझे कुछ समय तक उनके साथ काम करने का मौका मिला था। यूटी कैडर के हैं, तो अनिल बैजल जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। तो यहां में तो बस केवल लेफ्टिनेंट गवर्नर की क्या भूमिका होती है, गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर में क्या फर्क है, ये थोड़ा सा आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। क्योंकि आपने देखा है कि पुदुचेरी में भी किरण जी को बना करके भेजा गया है, किरण बेदी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर बना करके भेजा जाता है। तो ये जबकि दोनों जगह राज्य हैं, दिल्ली में भी राज्य है, वहां की विधानसभा है, चुनाव होते हैं, पुदुचेरी में भी विधानसभा है, वहां भी चुनाव होते हैं, जबकि दूसरे राज्यों में आप देखिए कि जो बना करके भेजे जाते हैं वो होते हैं गवर्नर, राज्यपाल। तो ये राज्यपाल और उपराज्यपाल में क्या फर्क है, दोनों की शक्तियों में क्या फर्क है, इस तरह की व्यवस्थाएं क्यों की गई हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, ये मैं आज जानबूझकर आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं और अपनी तरफ से मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताने जा रहा हूं। आप लोगों पर इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि आप लोग भी अपनी तरफ से कुछ मेहनत करने की आदत डालें। दोस्तों, जो मेहनत करने की आदत है सिविल सर्विस के लिए, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आप मुझे सिर्फ सुनते हैं तो चीजें पूरे संदर्भ के साथ आपके दिमाग में नहीं बैठेंगी। जब आप किताब में जाएंगे तो आप इत्मीनान से, अपने ढंग से, अपनी स्पीड से, अपनी सुविधा से उसे पढ़ेंगे, देखेंगे। और जब आप उसे पढ़ेंगे तो जब पन्ने पलटेंगे तो कुछ और चैप्टर्स आपकी आंखों के सामने से गुजरेंगे, आप दूसरी चीजों को भी अपने ढंग से देख सकेंगे। और यदि उसी दौरान कोई और सवाल आपके मन में उठ रहा है तो आप किताब में उसके उत्तर भी पा सकेंगे। यहां तो एक तरफा संवाद हो रहा है। हाँ, ये जरूर है कि एक तरफा संवाद किसी भी मायने में किताब के संवाद की तुलना में कम नहीं है, क्योंकि यही आपको ये संवाद बताने की स्थिति में होता है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, किनको वेटेज देना चाहिए, किनको लेस वेटेज देना चाहिए, किनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाना चाहिए। और बहुत सी चीजें ऐसी भी होती हैं जिनके एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में भी मैं आपसे चर्चा करता हूं। तो एक मौका है मित्रों, आप इसे देख लीजिए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा आज, जो सिविल सर्विस की तैयारी के लिए मुझे लगता है कि टेक्निकली आपको जानना बहुत जरूरी है। मित्रों, पाउल कोएलो का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही विश्व के महानतम उपन्यासकारों में है। अल्केमिस्ट उनकी बहुत ही फेमस किताब है, उपन्यास है। उसमें एक पात्र होता है जो अंग्रेज है और उसके साथ एक लड़का है, छोटा सा लड़का है, गांव का छोटू जिसे आप कह लीजिए। तो एक छोटा सा संवाद आया है और संवाद बड़ा खूबसूरत है अगर आप उसको संवेदना के स्तर पर ग्रहण करेंगे। तो वो जो छोटू है वो उस अंग्रेज है वो बेसिकली उस जिसके साथ ये रहता है, वो एक दिन पूछता है उस अंग्रेज से कि मुझे ये बताइए कि भाषा इतनी सरल सिंपल सी चीज होती है, हम आप बात कर रहे हैं, आप दूसरों से बात कर रहे हैं, मैं भी दूसरों से बात कर लेता हूं, काम चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो ये भाषा को व्याकरण बना करके, भाषा का व्याकरण तैयार करके इस भाषा को बेवजह इतना कठिन क्यों बना दिया गया है। प्रश्न उसने बहुत सही कहा कि भाई काम चल रहा है तो आपने इसे कठिन क्यों बना दिया। तो उस अंग्रेज ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया है दोस्तों, और उसने कहा कि देखो ये भाषा का व्याकरण इसलिए तैयार किया गया है कि जो इसे और अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं वो इसे जान सके। बस मित्रों, कुल मिलाकर बात यही है, खत्म हो गई बात कि चीजों को जानना एक अलग बात है लेकिन अच्छे तरीके से जानना एक अलग बात है। अखबार में मैंने ये खबर पढ़ी, बात खत्म हो गई, लेकिन आपको अच्छे तरीके से जानना है क्योंकि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो हर टॉपिक के साथ आपको इसी तरह की कोशिश करनी चाहिए। मित्रों, इसके बाद जो दूसरी खबर थी वो कंटेंट के फॉर्म में है, आपको आपने कल भी अखबार में पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा चौंक गया था कि ऐसा कैसे हुआ, और अगर नियम है तो होना ही था, और वो था कि हमारे यहां जो सुरेश कलमाड़ी जी हैं और जो अभय चौटाला हैं, जो इससे पहले जो हमारे ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं, उन्हें इसका आजीवन सदस्य बनाया गया, और उसमें नियम का मैं पढ़ करके चौंक गया था कि मैं कहा ऐसा कैसे संभव हुआ, क्योंकि कलमाड़ी जी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, खासकर कॉमन वेल्थ गेम वगैरह में, और वो जेल में भी रहे थे, तो कैसे उनको आजीवन सदस्य बना लिया गया। आज की न्यूज, कल की न्यूज में फिर रात में आपने देखा कि सरकार ने आईओसी से मांगा है कि आप जवाब दीजिए कि आपने कैसे उनको बनाया है, और अगर जवाब संतोषजनक नहीं रहा तो वो उसके साथ कोई संबंध सरकार नहीं रखेगी। तो ये तो बहुत ही बड़ा झटका है कि सरकार उसे संबंध नहीं रखेगी। और फिर न्यूज में ये भी था कि कलमाड़ी जी ने वो एक्सेप्ट नहीं किया है, वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया है। मित्रों, ये तो एक घटना है, छोटी सी घटना है। देखिए, खेलों के जगत में आप देख रहे हैं कि भारत में एक बहुत ही जबरदस्त आपको उथल पुथल का दौर दिखाई देगा खेलों की दुनिया में। आप देखिए, ठीक है, हम मेडल और उन सब में अभी बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत अच्छे खिलाड़ी नहीं पैदा कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास उसका टैलेंट तो नहीं है। टैलेंट भारत में है, और आप देख रहे हैं कि कुछ खेलों में तो भारत कितना अच्छा कर भी रहा है, धीरे धीरे उसकी उपलब्धियां बढ़ रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान भी बन रही है। दूसरा, आप देख रहे हैं कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी आपको एक बहुत जबरदस्त बदलाव दिखाई दे रहा होगा। फिल्में देखिए, दंगल फिल्म देखिए, इससे पहले सुल्तान फिल्म आई, इससे पहले और भी कितनी खिलाड़ियों पर बायोपिक फिल्म बन गई है। मतलब जब भी बायोपिक फिल्म बनाने की बात आ रही है, जीवन कथाओं पर फिल्म बनाने की बात आ रही है, तो सबसे पहले खिलाड़ियों को चुना जा रहा है। धोनी पर बनी, मिल्खा सिंह पर बनी, मैरी कॉम पर बनी, आप देखिए कि बनते चले जा रहे हैं। इसका मतलब है, इसका देखिए आप प्रत्यक्ष रूप से क्या अर्थ निकलता है, कि समाज खिलाड़ियों के प्रति अब अपनी भावनाओं को बदल रहा है। खेलों के कूदोगे होगे खराब वाली जो मानसिकता है अब खत्म हो रही है, समाज उन्हें अच्छी निगाह से देख रहा है। केवल समाज ही अच्छी निगाह से नहीं देख रहा है बल्कि उन्हें एक आर्थिक, कह लीजिए कि निश्चिंतता भी प्रदान कर रहा है। तो खिलाड़ियों के प्रति समाज में जो ये एक भाव, समाज के भावनाओं में जो परिवर्तन आ रही है, ये बहुत बड़ी ताकत होती है, जबकि समाज में उनके प्रति एक उथल पुथल पैदा होती है। तीसरी चीज आप देख रहे हैं कि रूल्स रेगुलेशंस और लॉ के स्तर पर भारतीय खेल संस्थाओं की लगातार आलोचना की जाती है, जबरदस्त आलोचना की जाती है कि वहां बहुत ज्यादा राजनीति है, बहुत ज्यादा भाई भतीजावाद है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। वो एक अलग है कि हमारे पास टेक्निक्स नहीं है और बाहर के लोगों को इतनी सुविधाएं मिलती हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन जो सुविधाएं सरकार दे रही वही उन तक सही तरीके से नहीं पहुंच रही है। और आप देख रहे हैं कि खासकर लोढ़ा समिति के रिपोर्ट्स को, सिफारिशों को लागू करने के मामले में बीसीसीआई और सुप्रीम कोर्ट के बीच में अभी किस तरह के तनाव की स्थिति बनी हुई है। बीसीसीआई हटने को तैयार नहीं है, और वो कारण यही है कि वो अब सारी चीजों को ट्रांसपेरेंट नहीं करना चाहते, राजनेताओं से अपने को मुक्त नहीं करना चाहते, या राजनेता अपने को उससे मुक्त नहीं करना चाहते, जबकि सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट का है कि नहीं, ये जो खेल संस्थाएं हैं इनको राजनीति से मुक्त किया जाना चाहिए। तो ये आप तीसरे स्तर पर आपको एक जबरदस्त एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। और चौथा स्तर तो वही है मित्रों की जो राज्य हैं वो अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं, खेल की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, खिलाड़ियों को इनाम दिए जा रहे हैं, एक चलिए अलग स्तर पर है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही दिया है कि हमको अब 2020 के लिए तैयारी करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा मेडल ला सकें। तो ये खेल जगत में जो परिवर्तन हो रहा है, सच पूछे तो ये उसका जुड़ा हुआ एक हिस्सा है कि जो भी भ्रष्टाचारी होगा, जिस पर भी इस तरह के आरोप होंगे, उन्हें खेल जगत में स्थान नहीं मिलना चाहिए, चाहे फिर वो खिलाड़ी हो, राजनेता हो, कोई भी क्यों न हो। तो अगर सच में इस चीज को स्वीकार नहीं किया गया तो ये डीमोरलाइज करेगा खिलाड़ियों को भी और खिलाड़ियों के प्रबंधन से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनको भी। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि ये सही दिशा में उठाया गया सरकार का कदम हो सकता है। आप इसे किस तरीके से एनालिसिस करेंगे वह आपके ऊपर है। तो मित्रों ये जो दो खबरें थी ये इंपॉर्टेंट खबरें थी कंटेंट के फॉर्म में। हाँ, खेल जगत अपने आप में आपको मालूम है कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर हर साल एक या दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो मित्रों AIR न्यूज से बस इतना ही। अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर। दोस्तों मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अब साल खत्म होने को है, कुछ ही दिन बच गए हैं और अखबारों में पूरे साल भर के दौरान क्या क्या घटनाएं पर्टिकुलर फील्ड में हुई हैं अखबारों में आना शुरू होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप उन घटनाओं को, इस तरह के आर्टिकल्स को आप पढ़ें। इसलिए नहीं कि उसमें एक टॉपिक पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, बल्कि इसलिए कि आपको दो चीजें पता लगेंगी। पहला तो यह कि इस फील्ड में, जैसे कि मान लीजिए इकोनॉमिक्स में क्या क्या घटनाएं घटी, साहित्य कला संस्कृति में क्या घटनाएं घटी, राजनीति में क्या घटनाएं हुई, खेल के जगत में क्या घटनाएं हुई, हमारी विदेश नीति के क्षेत्र में क्या घटनाएं हुई, इस तरह के आर्टिकल्स आने शुरू होंगे या शुरू हो भी चुके हैं। तो आपको पता लगेगा कि पहली बात तो ये कि किसे हम इंपॉर्टेंट घटनाएं मानते हैं, राइट। दूसरा, आपके दिमाग में साल भर की जो घटनाएं हैं वो एक रील की तरह, अतीत के एक रील की तरह उभर आएंगी, तो आपका एक ऑटोमेटिक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। उसका फायदा ये होता है मित्रों कि चाहे फिर प्री में क्वेश्चंस पूछे जाएं उससे रिलेटेड, या अक्टूबर में जो मेंस के एग्जाम होंगे उसमें पूछे जाएं, या आप दूसरे सिविल सर्विसेज या कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं उनमें इस तरह के जब इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां आपकी स्थिति पहले की तुलना में थोड़ी सी मजबूत होगी, बेहतर होगी। तो मित्रों इसे आप सब जरूर करें। उदाहरण के तौर पर मैं आज आपको एक बहुत अच्छा आर्टिकल हिंदुस्तान का प्रोवाइड कर रहा हूं जो कल के हिंदुस्तान में, दैनिक हिंदुस्तान में छपा है और जो हमारे पूर्व सचिव रहे हैं विदेश सचिव शशांक जी, उनका लिखा हुआ लेख है और वो इसी पैटर्न पर लिखा गया है कि एक साल में भारत ने विदेश नीति में क्या हासिल किया और किन चीजों में वह चूक गया। चूंकि वो विदेश सचिव हैं, अपने आप में मतलब पूरी दुनिया में भारत के विदेशी प्रशासन का नेतृत्व कर रहे हैं, तो नो डाउट कि उनकी अपनी दृष्टि बहुत व्यापक है, बहुत गहरी भी है। ये लेख मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इस लेख को आप ध्यान से पढ़िएगा। देखिए हर चीज आपको ध्यान से ही पढ़नी चाहिए क्योंकि ध्यान से पढ़ने से वो चीज बहुत मूल्यवान बन जाती है। इसमें दो तीन पॉइंट्स उन्होंने बहुत गजब के मेंशन किए हैं, उसमें से एक पॉइंट तो बहुत ही एप्रिसिएबल है मित्रों और अपने आप में एक सिविल सर्विस के क्वेश्चन का क्वेश्चन भी बनता है। उसमें उन्होंने लिखा है कि जो सबसे बड़ी उपलब्धि मेंशन किया है कि विदेश नीति को आम जनता से जोड़ने की कोशिश रही है। सच पूछे तो आजादी के बाद से अब तक जो हमारी विदेश नीति रही है, देखिए विदेश मंत्री कैबिनेट रैंक का मंत्री होते हैं, बहुत ही सम्मानित मंत्री होते हैं, जब भी बात होती है तो उसमें यही कूटनीति की बात होती है, किस देश के साथ हमारे संबंध कैसे चल रहे हैं और व्यापार में क्या हो रहा है और कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा मित्र है, इस रूप में ही विदेश नीति की बात होती है। आम जनता कभी विदेश नीति से खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती थी। यह पहला मौका है इस सरकार के दौरान कि विदेश नीति को बिल्कुल आम जनता से जोड़ दिया गया। अब आप सोचने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्या हुआ। ये जो कोशिश है ये नो डाउट कि हमारे नए प्रधानमंत्री जी अभी जो है इनके आने के बाद से हुई है और सुषमा स्वराज जी ने इसमें बहुत जबरदस्त रूप से काम किया है जिसकी वजह से उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिली है। अब आप देखते हैं कि कैसे अखबारों में विदेश मंत्रालय की चीजों की खबर छपने लगी है। शुरुआत तो यहीं से हो गई जब हमारे प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाते हैं तो वहां जो हमारे रहने वाले भारतीय हैं देखिए उनका किस तरह से वेलकम होता है, उनसे किस तरह से जुड़ते हैं, उनसे किस तरह का उनका किस तरह से वो आह्वान करते हैं। तो वहां से लगता है कि नहीं, विदेश नीति केवल यहां से जाकर के और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से समझौते पर हस्ताक्षर करके आने की नीति नहीं है, बल्कि वहां रहने वाले भारतीयों से जुड़ने की और उन भारतीयों को हिंदुस्तान के आवाम से जोड़ने की भी नीति है। वहां से प्रधानमंत्री जी के प्रयासों को आप उठाइए और फिर यहां देखिए कि कैसे लोग जब संकट में फंसे विदेशों में तो भारत के विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप से कैसे उनको निकाला गया, और निकाला गया वो केवल भारतीय नहीं है बल्कि दूसरे देशों के भी नागरिक हैं, आम जनता जुड़ गई। आप देखिए कि कैसे जब प्रॉब्लम आती है तो विदेश मंत्री से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो वहां बंद हैं, वो फलाना है, और कैसे विदेश मंत्री फिर अपने लेवल पर हस्तक्षेप करके उस समस्या को सुलझाती हैं, ये आम जनता से जुड़ने की बात है। कल या परसों की अखबार में आपने पढ़ा होगा कि नॉर्वे में एक घटना घटी है कि भारतीय माता पिता से उनके 4 या 5 साल के बच्चे को सरकार ने ले लिया है वहां के कुछ अपने रूल्स रेगुलेशंस के तहत, जिसमें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने फिर हस्तक्षेप करके कहा है कि नहीं, उनका बच्चा भारत उनके माता पिता को लौटाया जाए। तो आप देख रहे हैं कि आम आदमी की जो समस्याएं हैं उनमें भी विदेश मंत्रालय अब रुचि ले रहा है। तो स्वाभाविक रूप से ऐसी ही स्थिति में जो हमारे लोग हैं वो ये महसूस करेंगे कि नहीं, ये जो विदेश मंत्रालय भी है ये हमारा ही अपना मंत्रालय, ये केवल विदेशों का मंत्रालय नहीं है कि विदेशियों से डील करने वाला मंत्रालय, बल्कि भारतीयों के माध्यम से विदेशियों को डील करने वाला मंत्रालय है। तो ये विदेश नीति के चरित्र में मित्रों एक बहुत ही जबरदस्त परिवर्तन आया है जो मैं स्पेशली हाईलाइट करने की कोशिश यहां कर रहा हूं। इसके बाद देखिए उन्होंने 2-3 अच्छी बातें और दी हैं और फिर एक असफलता की भी उन्होंने बात कही है कि जो एक्ट ईस्ट की जो हमारी पॉलिसी है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, खासकर नेपाल और श्रीलंका हमारे निकट नहीं आ सके हैं, उनके साथ हमारे जो घनिष्ठ संबंध नहीं बन पाए, और हिंद महासागर में भी जैसा कि दक्षिण चीन सागर में चीन अपने प्रभुत्व को स्थापित कर सका है, भारत हिंद महासागर के क्षेत्र में वो शांति की स्थिति को नहीं बना पाया है। तो ये 2-3 पॉइंट उन्होंने चूक के दिए हैं कि जिसमें हम चूक गए हैं। एक चूक उन्होंने ये भी बताई है कि हम रशिया के साथ अपने संबंधों को बेहतर नहीं बना सके और एक तरफा झुकते चले गए हैं जो हमारे बहुत हित में नहीं है। इसके बाद उन्होंने फेवर में कुछ बातें लिखी हैं। आप सब चूंकि अखबारों से जुड़े हुए हैं, न्यूज सुन रहे हैं, डेली ऑडियो गाइडेंस भी सुन रहे हैं, तो जब आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको अजूबा नहीं लगेगा, आर्टिकल बहुत अनपहचाना सा नहीं लगेगा, अदरवाइज तो फिर ये आर्टिकल आपके समझ में नहीं आएगा। जो लोग न्यूज से नहीं जुड़े हुए, कंटिन्यूटी को मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो उनके, क्योंकि एक एक लाइन में बात कही गई है तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे। इससे आर्टिकल की खासियत एक और भी है मित्रों कि आप इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिएगा, अगर कोई भी स्टेटमेंट है तो उस स्टेटमेंट को पकड़ करके आप उसके साथ थोड़ा सा वक्त बिताइए और उस पर सोचने की कोशिश कीजिए कि अगर ये बात कह रहे हैं, जैसे अगर ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो ग्वादर बंदरगाह तैयार कर रहा है चाइना, जबकि हम दूसरी ओर चाबार में बंदरगाह तैयार कर रहे हैं, तो हमारी प्रगति उतनी नहीं है जितनी कि ग्वादर बंदरगाह की है। इस पर थोड़ा सा सोच करके देखिए, क्या है ग्वादर बंदरगाह, क्या है चाबार बंदरगाह, कैसे इस पर बनाने की बात हो रही है, क्यों हो रही है, इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सकेगी। मित्रों इसके साथ ही एक और एडिटोरियल कमेंट है जो खासकर 2016 की आर्थिक स्थितियों के ऊपर है और टाइम्स ऑफ इंडिया का ये कमेंट है, तो आप इसे भी देख लीजिएगा। इसकी चर्चा करने के लिए अब मेरे पास वक्त नहीं है। न्यूज़पेपर्स की मैं कुछ और क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। फ्रेंड्स अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर जो ईमेल का चरण है, तो सभी ईमेल लिखने वाले अपने साथियों को धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों कल मुझे इरफान खान का मेल मिला है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर मेल जिसका मैं विशेष रूप से यहां उल्लेख कर रहा हूं, और इरफान इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी, क्योंकि अभी आप अपने कैरियर के डेवलपिंग स्टेज पर हैं और इसी तरह से भाषा और इसी तरह से भावनाएं और इसी तरह से कंटेंट को आप बनाए रखें और इसको बल्कि कोशिश करें कि लगातार न केवल बनाए ही रखें बल्कि बढ़ाते भी चले जाएं। कुछ और मित्रों के मैं नाम ले रहा हूं, ईमेल लिखने वाले वो हैं अभिषेक गुप्ता, नितिन लोकंशी, अभिषेक रंजन, स्वाति झंडई, राजू कुमार, अखिलेश्वर, शौकत अली खान जयपुर से और दीपक कुमार अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अनुमति चाहूंगा, नमस्कार।